यादों के झरोके।
अजीज सामईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके लेकर हाजिर खिदमत हैं। हाशिम अली का सलाम कबूल कीजिए। सामईन, आज का प्रोग्राम माजी में 11 बहमन, 9 रजब और 31 जनवरी को रोनुमा होने वाले बाज अहम वाकयात पर मुश्तमिल है। 9 रजब सन 921 हिजरी कमरी को ईरानी मौर्रिख अब्दी बेग शीराजी ईरान के जनूबी शहर शीराज में पैदा हुए। वो नवेदी के नाम से मारूफ थे। अब्दी बेग शीराजी सन 937 हिजरी कमरी में जब 16 साल के थे तो दफ्तरी मुलाजमत से वाबस्ता हो गए और बरसों तक ये सिलसिला जारी रहा। इस ईरानी मौर्रिख की अहम तरीन किताब ईरान में सफवी सिलसिले बादशाहत के 100 साल से ज्यादा की तारीख है। इस किताब में मस्कूरा दौर हुकूमत के आगाज से सन 978 हिजरी कमरी तक के हालात का जिक्र है। नौ रजब सन 963 हिजरी कमरी को 10वीं सदी हिजरी कमरी के एक मुमताज़ आलिम दीन इज़्ज़ुद्दीन सैयद हुसैन ने शहादत पाई। वो सन 906 हिजरी कमरी में लबनान के एक गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने अय्याम जवानी में मुरवजा तालीम हासिल करनी शुरू की। इज़्ज़ुद्दीन सैयद हुसैन ने उस दौर के फुकहा से कस्बे फैज़ किया और बुलंद इल्मी और इरफानी मकाम हासिल किया। उनको सन 963 हिजरी कमरी में 9 रजब को शहर सैदा में जहर देकर शहीद कर दिया गया। इकतीस जनवरी सन 1599 ईस्वी को हिंदुस्तान में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई। इस कंपनी के क़याम का हुक्म बरतानिया की मलके एलिजाबेथ अव्वल ने दिया था। ये कंपनी उस ज़माने में बड़ी सियासी तब्दीलियों का बाइस बनी और उसने जनूबी एशिया के जरखेज़ इलाक़ों में बरतानवी साम्राज्य के तसल्लुत की बुनियाद रखी। बाद अज़ां इस कंपनी के ज़रिए बरतानवी हुकूमत जनूबी एशिया में अपनी इस्तेमारी सरगर्मियां अंजाम देने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के 250 साल के बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पर बरतानिया के मुकम्मल तसल्लुत और असर व रसूख की वजह से सरजमीन हिंदुस्तान भी बरतानिया का एक हिस्सा शुमार की जाने लगी और मलका विक्टोरिया ने हिंदुस्तान और बरतानिया की मलका की हैसियत से ताज पहना। इस तरह हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ी साम्राज्य के सख्त दौर का आगाज हुआ। इकतीस जनवरी सन 1850 ईस्वी को चीनी अवाम की सबसे बड़ी तहरीक जो ताई पिंग यानी अमन व सलामती की तहरीक के नाम से मशहूर है शुरू हुई। इस तहरीक के असबाब मेहनत कश तबके की बदहाली और मुआशरे में फैली शदीद गुर्बत थी। ये तहरीक खुदाई फरमान के नाम के तहत मंचू ख़ानदान की हुकूमत की सरनिगुनी के मकसद से आगे बढ़ी और ज़मीन की मुनसिफाना तकसीम, मर्दों और औरतों के दरमियान मुसावात और भाईचारे का उसूल इस तहरीक के मुतालबात थे। ताइपिंग तहरीक 14 साल तक जारी रही और आखिरकार बेशुमार लोगों की हलाकत, बरतानिया और फ्रांस की मुसल्लहाना मुदाखलत और इन मुल्कों की तरफ से चीन के ज़मींदारों और मंचू ख़ानदान की हिमायत के बाद सरकोब कर दी गई। 31 جنوری سن 1951 عیسوی کو اردو کے ایک معروف شاعر سیماب اکبر آبادی نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام عاشق حسین تھا۔ وہ سن 1880 میں اکبر آباد یا آگرے میں پیدا ہوئے۔ ایف اے میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث تعلیم ترک کرنی پڑی۔ سن 1898 میں انہوں نے داغ کی شاگردی اختیار کی اور دبستان دہلی سے وابستہ ہو گئے۔ 1921 میں سیماب اکبر آبادی نے تصنیف و تالیف کا ایک ادارہ قصر الادب کے نام سے قائم کیا، جس میں نو مشق شعرا کے کلام کی اصلاح کی جاتی تھی۔ سیماب اکبر آبادی قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سیماب اکبر آبادی بقول خود 284 کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا منظوم ترجمہ بھی کیا تھا، جو وحی منظوم کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ گیارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کی مسلح افواج نے آخری فوجی پریڈ میں حصہ لیا، جو محض ایک دکھاوا تھا۔ یہ فوجی پریڈ عوام میں خوف و وحشت پیدا کرنے کے لیے تہران کی سڑکوں پر کی گئی تھی۔ اس پریڈ کے دوران، جس کو عوام نے ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، بہت سے فوجی انقلابی عوام سے آمیلے اور شاہ کی جابر و ظالم حکومت سے اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس دن شاہ کی حکومت سے وابستہ بہت سے شاطر افراد، جنہیں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا یقین ہو گیا تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تہران کے وقت کے مطابق رات کے 3:30 بجے فرانس سے ایران کی طرف بذریعہ طیارہ روانہ ہوں گے اور 12 بہمن کو صبح 9:30 بجے تہران پہنچ جائیں گے۔ اس خبر کے اعلان کے بعد ایران کے عوام لاکھوں کی تعداد میں بڑے شوق و ولولے کے ساتھ اپنے رہبر کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حالانکہ فوج نے سارے شہر میں کرفیو لگا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام نے سڑکوں پر نکل کر عملی طور پر کرفیو کو ناکام بنا دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔